بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان کی چند ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج اور آئندہ پارلمانی الیکشن پر اس کے اثرات کا جائزہ۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، گزشتہ دنوں ہندوستان کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات منعقد ہوئے، جن میں سے ایک ریاست میزورم میں ووٹوں کی گنتی پیر کو انجام پائے گی، جبکہ 4 ریاستوں کے جو نتائج اب تک سامنے آئے ہیں ان میں کانگریس پارٹی کو نمایاں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال دہلی کی ہے، جہاں کانگریس کو مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ بی جے پی پہلے نمبر پر ہے اور پہلی بار الیکشن کے میدان میں اترنے والی عام آدمی پارٹی دوسری پوزیشن پر ہے، اور اس کے لیڈر اروند کیجریوال پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کانگریس اور بی جے پی میں سے کسی کی بھی حمایت نہیں کریں گے۔ اب اگر دہلی میں ہنگ اسمبلی آتی ہے، جس کا امکان تقریباً روشن ہو چکا ہے، تو حکومت سازی کے مرحلے کا کیا ہوگا؟ حکومت سازی کیسے انجام پائے گی اور کیا یہاں دوبارہ انتخابات ہوں گے؟ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم کانگریس پارٹی کی شکست کے اسباب کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس بات پر بھی گفتگو ہوگی کہ موجودہ انتخابی نتائج 2014 کے پارلمانی انتخابات پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری تجزیاتی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ہندوستان کی چند ریاستوں میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے ہماری تجزیاتی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آج ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان کو۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا ہندوستان کے ممتاز کالم نویسوں حسن کمال اور ڈاکٹر افضل مصباحی کو۔ لیکن اس سے پہلے ہم دہلی میں اپنے نمائندے شمشاد کاظمی صاحب سے نتائج کی تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے۔ شمشاد صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی شمشاد صاحب، کیا صورتحال ہے نتائج کی اس وقت؟ ووٹوں کی گنتی جاری ہے یا ختم ہو چکی ہے؟
جی تقریباً مکمل ہو رہی ہے جی، اور بس تھوڑی سی سیٹیں اور رہ گئی ہیں۔ دہلی کی 70 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کو 32 سیٹیں ملی ہیں اب تک جی، اور ایک سیٹ پر وہ آگے چل رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے زبردست کمال کر دیا ہے جی، اور ایسی توقع نہیں تھی کہ اتنی کامیابی اس طرح کی ملے گی عام آدمی پارٹی کو۔ اسے 26 سیٹیں اب تک مل چکی ہیں اور ایک سیٹ پر وہ آگے چل رہی ہے، اسے 27 سیٹیں مل رہی ہیں۔ کانگریس کا بہت برا حال ہے، کانگریس کو 7 سیٹیں ملی ہیں، ایک پر آگے ہے، یعنی اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے 8 سیٹیں ملیں گی 70 رکنی اسمبلی میں۔ 15 سال سے برسر اختیار رہی ہے، دوسروں کو 2 سیٹیں ملی ہیں۔ جہاں تک مدھیہ پردیش کی بات کریں، مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت تھی، وہاں شیوراج چوہان حکومت کی قیادت کر رہے ہیں۔ 230 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کی کو اب تک 151 سیٹیں ملی ہیں، 14 پر آگے ہے۔ کانگریس کو 48 سیٹیں ملی ہیں، 10 پر آگے چل رہی ہے، اور دوسروں کو 3 سیٹیں ملی ہیں، 4 سیٹوں پر آگے ہے۔ راجستھان میں کانگریس کا صفایا ہو گیا ہے، کانگریس 199 رکنی اسمبلی میں اشوک گہلوٹ کی قیادت والی کانگریس حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ یہاں بی جے پی کو 160 سیٹیں ملی ہیں، 2 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے، کانگریس کو صرف 21 سیٹیں ملی ہیں۔ چھتیس گڑھ میں جہاں بی جے پی کی حکومت تھی، وہاں کانگریس نے زبردست ٹکر لی ہے، مقابلہ کیا ہے، اور 34-34 سیٹیں دونوں کو ملی ہیں۔ کانگریس کو بھی 34 سیٹیں ملی ہیں اور وہ 7 پر آگے چل رہی ہے، بی جے پی نے بھی 34 سیٹیں حاصل کی ہیں اور 13 پر آگے چل رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے ان 4 ریاستوں کی۔
جی شمشاد صاحب، تو اس میں آپ کے راجستھان اور ایم پی کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے، وہاں بی جے پی کی حکومت بنے گی، छत्तीसगढ़ में अब देखते हैं क्या होता है। दिल्ली में तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बन रही है, यहाँ पर
दिल्ली में
जी हंग असेंबली आ रही है, हुकूमत साजी के हवाले से क्या हो रहा है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? दिल्ली में किसी की हुकूमत बनेगी या फिर यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने के इम्कानात ज्यादा हैं?
देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, वो साफ साफ कह चुके हैं कि वो अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो वो बीजेपी और कांग्रेस किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी की हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हंग असेंबली आ रही है, बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। और अगर बीजेपी को बहुत हद तक उसने सीटें हासिल की हैं, लेकिन फिर भी जो 36 सीटें चाहिए तो 36 का आंकड़ा मुकम्मल करना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में मुअल्लक असेंबली सामने आ रही है, और अगर मखलूत हुकूमत नहीं बनती है तो फिर सदर राज नाफिस हो सकता है, 6 महीने तक ये सूरत हाल रहेगी। और उसके बाद से फिर दोबारा अगर इंतखाबात होंगे तो जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो उसे वाज़ अक्सरियत हासिल हो जाएगी।
जी शमशाह साहब, एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के हौसले तो यकीनन इस वक्त बुलंद होंगे, इनके लीडरों का अब क्या कहना है आइंदा पार्लियामानी इलेक्शन में? क्या वो अपनी पार्टी को एक कौमी पार्टी बना के पेश करेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। केजरीवाल ने आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जमहूरियत की कामयाबी है, और बीजेपी के दूसरे लीडरों ने भी, उनके भी बयान आते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने शीला दीक्षित को हराया है और अब नरेंद्र मोदी को हराने की तैयारी की जाएगी, लेकिन उनका साफ साफ इशारा लोकसभा इंतखाबात की जानिब है।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। और नाज़रीन, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अंजान साहब, आधा उर्द है अंजान साहब, 4 रियासतों में जहां वोटों की वोटों की गिनती हुई है, बहुत हद तक पोजीशन वाजे हो चुकी है, नतायज पर आपका तबसरा क्या है?
देखिए, एक तरीके से अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी को बहुत जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ा है
जी,
अवाम मुखालिफ पार्टियों ने रंग दिखाया है, बरसरे इक्तदार थी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में
जी,
दिल्ली में, उन्हें इन दोनों सूबों से अवाम ने खारिज कर दिया है। खारिज होना एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह की, जिसको कहते हैं कि धोबी पाट दिया है जनता ने वोटों से, कांग्रेस पार्टी पनाह मांग रही है राजस्थान में। मेरे ख्याल से राजस्थान के आजादी के बाद के इंतखाब में इस तरह की जीत एक मौके को छोड़कर शायद कभी देखने को मिली हो किसी पार्टी को। और पार्टी इन पावर, जो पार्टी बरसरे इक्तदार हो, वो इस बुरी तरह से जनता से किनारा कशी करेगी या जनता उससे किनारा कशी करेगी, ये लोग सोच रहे हैं हुआ क्या आखिर, क्यों ऐसी बात? इतनी सुंदर स्कीमें और इतनी एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के वजीर आला अशोक गहलोत साहब ने पिछले 8-10 महीने से रियासती खजाने का जो है मुंह खोल दिया था, हर घर में करीब करीब 2,000 से लेकर 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप या किसी न किसी तरीके से 2,000 या 3,000 रुपए की सरकारी इमदाद, चाहे वो बुजुर्गों के नाम पर हो, चाहे लड़कों की पढ़ाई के नाम पर हो, चाहे ख्वातीनों को कुछ राहत देने के सवाल पर हो, चाहे लड़कियों को पढ़ाई के सवाल पर हो, और चाहे उन्हें गेहूं और चावल के तौर पर सस्ते दामों पर मुहैया कराने की हो, हर शक्ल में उन्होंने दिया। लेकिन ये जुगत भी और ये तौर तरीका भी कामयाब नहीं हुआ, ये काम भी लोगों को अपनी तरफ लाने में नाकामयाब हुआ, और वोटरों ने इन सारी इमदादों के बावजूद ही, दिल खोल कर राहत के बावजूद भी, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दिल्ली जो हिंदुस्तान का एक तरीके से कहा जाए दिल भी है और हिंदुस्तान की कौमी काबीने की और मरकजी काबीने का की जगह भी है, वहां पर रियासती सरकार में जहां 15 साल से कांग्रेस काबिज थी, शीला दीक्षित की सरकार, उसे जिस तरह की मुंह की खानी पड़ी, वहां भी एक तरीके से जिसे आप समझेंगे शराफत साहब, आप समझ सकते हैं धोबी पाट किसे कहते हैं, जैसे धोबी अपने कपड़े को भिगा करके पट्टे पर साफ करने पटकता है, ठीक वैसे ही वोटरों ने जो कांग्रेस पार्टी बरसरे इक्तदार थी उसको उठाकर पटक दिया, 9-10 सीटों के आसपास ले जाकर के टहला दिया। हालांकि इस वक्त अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छी उम्मीद थी, लेकिन वो अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, बल्कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान को जबरदस्त एक कहा जाए कि अवामी जिसको कहें कि सपोर्ट की बदौलत वो फिर आ गए हैं सरकार में, और जो छत्तीसगढ़ है यहां कांटे की लड़ाई चल रही है। तो न छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आ पा रही है और न दिल्ली में सरकार बना पा रही है, कश्मकश जारी है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त का रास्ता अपना सकती है अपनी सरकार बनाने के लिए। और देखना यह होगा कि अगर इस तरह से सरकार बनती है तो जो एक कहते हैं ना कि बड़े एथिकल ग्राउंड के ऊपर एक बड़ी ही कि हम एक पार्टी हैं जो बड़ी एक ऐसे रास्ते पर चढ़ते हैं जहां पर गलत रास्तों को लेकर चलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, हम एक ऐसे किरदार की पार्टी है, वो सारी चीजें देखने में आएंगी। लेकिन यकीन 2014 की पार्लियामानी इलेक्शन जो मई के महीने में होने वाले हैं उसके पहले ये चार सूबों के इलेक्शन एक कई नई किस्म की आहट पेश करते हैं।
जी अनजान साहब, आपने बताया कि देखिए दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह से कांग्रेस को इख्तदार से महरूम होना पड़ा। राजस्थान में आपने बताया कि हर घर को किसी न किसी शक्ल में वहाँ की हुकूमत ने राहत पहुँचाने की कोशिश की, चाहे वो बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप हो या बूढ़ों के लिए इमदादी रकम हो या गल्ले की सूरत में। दिल्ली में भी कांग्रेस ने बहुत ही बुलंदोबांग बहुत बड़े बड़े दावे किए तरक्याती कामों के और सहूलतें फराहम करने के। तो इसके बाद आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ा है, तो फिर खमियाजा किस चीज़ का भुगतना पड़ा उसे?
देखिए कई सवाल उसके सामने दरपेश है और आवाम के सामने भी दरपेश है। कांग्रेस पार्टी ये तय ही नहीं कर पाई कि वो पार्टी किसकी है। वो गरीब लोगों की पार्टी है, वो मेहनत कश आवाम की पार्टी है, वो इंसाफ पसंद लोगों की पार्टी है, ये मुल्क के अंदर उन नौजवानों की पार्टी है जिनकी आज तादाद कोई 65% है इस मुल्क के अंदर 35 साल से कम लोगों की। क्या उनके जज्बात की रहनुमाई करने वालों की पार्टी है? क्या इस मुल्क के अंदर गरीब और पसमांदा लोगों की पार्टी है, राहत देने वाले लोगों की पार्टी है, या इस मुल्क की दौलत को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में लुटाने वालों की पार्टी है, या कॉरपोरेट के हाथों से मुल्क की दौलत को बचा करके गरीब में तकसीम करने वाली पार्टी है? ये पार्टी ही तय कर नहीं पाई। और एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि एक और वजह थी कि खारजा पॉलिसी में लगातार ये दिल्ली की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने अमरीकी हुक्मरानों के आसपास खड़ी दिखाई पड़ी, अमरीका के आसपास खड़ी दिखाई पड़ी, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी खुद मुख्तारी की पॉलिसी को छोड़ते हुए दिखाई पड़ी, और इसलिए हर मोर्चे पे ये सरकार एक तरीके से नाकामयाब रही। महंगाई को रोकने में ये कामयाब नहीं रही, महंगाई बढ़ती चली गई, लोगों की आवाम आप समझिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसे कांग्रेस पार्टी ने एक पार्लियामानी कमेटी के तहत जांच कराई थी कि मुल्क में कितने लोग गरीब हैं, पसमांदा हैं, जस्टिस प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे उनकी क्यादत में कमेटी बनी थी, उसने 2007 में रिपोर्ट पेश की कि मुल्क के 106 करोड़ लोगों की जो उसने हिसाब किताब लगाकर बताया कि देश के अंदर लगभग 77% लोग यानी 83 करोड़ 65 लाख लोगों की रोजाना की आमदनी 20 रुपए कम है
जी।
तो ऐसी गुर्बत में लोग जी रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, जरूरी जिंसों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिनसे खाने पीने दूध दवा के दाम, दवा के दाम तो 300% तक बढ़ गए, दूध के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, लोग गरीबी और गुर्बत से आशना है। और एक तरीके से कहा जाए कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ गई, इससे लोगों में नाराजगी थी और वो एक ऐसी पार्टी की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जो शायद उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही होगा, लेकिन बदलाव की तरफ लोग जाना चाहते थे। और इसीलिए दिल्ली के अंदर न लोगों ने बीजेपी को वोट किया, न लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, न बरसरे इक्तदार कांग्रेस पार्टी को वोट किया, बल्कि एक बड़ा हिस्सा लगभग 32% वोट आप लोगों का वोट, नौजवानों का वोट, मेहनतकशों का वोट, मिडिल क्लास का वोट, दरमियानी तबके का वोट, सरकारी मुलाजमों का वोट, ये आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मिला है, जिसने पूरे हिसाब किताब को एक नए तरीके से पेश कर दिया। और अगर मैं ये कहूं कि आने वाले इलेक्शन के दौर में जो दिल्ली के इलेक्शन है, वो ये कहते हैं कि दिल्ली के ये इलेक्शन कहते हैं कि मुल्क के अंदर एक तीसरे रास्ते की तरफ लोग मुंह लगाकर देख रहे हैं कि कोई क्या तीसरा रास्ता हो सकता है, और शायद वो रास्ता गैर भाजपा, गैर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेस का रास्ता है, जिसीलिए शायद उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने यहां सपोर्ट दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी मुमताज कालम नवीस और मारूफ तजिया निगार हसन कमाल साहब से। हसन कमाल साहब, आधा वर्ज है। जनाब, चार रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज बहुत हद तक वाजे हो चुके हैं, क्या तबसरा है आपका इस सूरत हाल पर?
जाहिर है कि ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है
जी,
लेकिन अभी उसका मुकम्मल तज्जिया जो है
जी,
वो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा
जी।
फिर भी एक बात ये कही जा सकती है कि इंतखाबात में मोदी का कोई फैक्टर हो सकता है, मोदी की कोई वेव नहीं थी। उसका एक साफ ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीतें
जी
मोदी के बगैर हुई है, बल्कि मध्य प्रदेश में तो शिवराज चौहान ने अपने मुहिम में न मोदी की तस्वीर इस्तेमाल की थी, न मोदी का नाम इस्तेमाल किया था। मोदी का सारा जोर छत्तीसगढ़ पर था
जी जी,
जहाँ पर बिल्कुल बहुत मामूली फर्क है हार और जीत में। और दिल्ली में अगर कांग्रेस हारी है तो वो बीजेपी की वजह से नहीं हारी है
जी,
आम आदमी पार्टी की वजह से हारी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस इन असेंबली इंतखाबात पर मोदी का कहीं कोई साया नजर आ रहा है
जी। बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे आप कि मोदी मोदी का किरदार तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ने दो रियासतों में तो आप देखें कि कांग्रेस को इकतदार से महरूम कर दिया है, एमपी में अपना कब्जा उसने बाकी रखा है और छत्तीसगढ़ में तो अभी सूरत हाल जो है वो 50-50 है
जी। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था
जी
कि कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर है
जी,
लेकिन बीजेपी के लिए इसलिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि इससे पहले दो तीन रियासतें जिन पर उसका बरसों से इख्तदार था उसके हाथ से निकल चुकी है। उत्तराखंड निकल चुकी है, हिमाचल प्रदेश निकल चुका है और कर्नाटक निकल चुका है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की हमेशा से एक कमजोरी है तो उसने रियासती लीडरशिप नहीं उभरने दी
जी,
जो बीजेपी ने इस बारे में ज्यादा एहतियात से काम लिया और हर इलाके और हर सूबे में लीडरशिप को पनपने का मौका दिया। जाहिर है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिजिया है और मैं समझता हूँ कि उन्हें अपनी तंजीम पर एक मरतबा असर नौ नजर डालना पड़ेगी और तंजीम को दोबारा मुरतब और मुनजम करना पड़ेगा। तो यकीनन इस वक्त तो जो हालात है उसमें ये नजर आता है कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, लेकिन उन्हीं इलाकों में किया है जहां बीजेपी हमेशा ताकतवर रही।
जी बहुत बहुत शुक्रिया लाइन,
चाहे राजस्थान हो।
जी जी लाइन पर रहिएगा हसन कमाल साहब।
चाहे
जी
जी जी
जी अनजान साहब आप क्या कहते हैं, ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये कांग्रेस के लिए यकीनन बुरी खबर है, क्या इसको बीजेपी के लिए अच्छी खबर कहा जा सकता है? अनजान साहब
तो हाँ जी, ये अभी फिलहाल जो पोजीशन ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली है, राजस्थान में कामयाबी हासिल कर ली है।
ये मेरे ख्याल में अफजल मिसबाही साहब बोल रहे हैं, ये मेरा सवाल अनजान साहब से था। मिसबाही साहब हम आपकी तरफ आएंगे, ये सवाल मेरा अनजान साहब से। जी अनजान साहब
जी,
मेरा सवाल ये था कि ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी है क्या इसको बीजेपी अच्छा शगुन समझेगी?
भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी
जी
भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है कि राजस्थान में उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की है
जी,
मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने को बरकरार रखा है, ये अच्छी खबर है। लेकिन इस बात से ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि 2014 के पार्लियामानी इलेक्शन के पहले ये जीत उन्हें कुछ नई बुलंदियों पर ले जाएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2004 के पार्लियामानी इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर की हुकूमत में थी, उससे पहले 2003 के असेंबली इलेक्शनों में चार सूबों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी
जी जी।
और उसके 6 महीने बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो शाइनिंग इंडिया चमकता भारत इस नारे के साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन में भाजपा उतरी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की कयादत थी, और उसके बाद बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लिहाजा इन चार सूबों के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली और छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने जो शफकत हासिल की है उसकी बुनियाद पर अगर वो ये कहें कि 2014 का वो अच्छे इलेक्शन वो जीत रहे पार्लियामेंट का, मेरे ख्याल से ये खाम ख्याली भी होगी और गलत फहमी भी होगी, क्योंकि असेंबली के सवालों पर इन चार सूबों में इलेक्शन हुआ था। पार्लियामेंट के सवाल 2014 तक आते आते एक नेशनल इशू, अवामी सवाल, एक मरकजी सवाल, हमारी खारजा पॉलिसी का सवाल, इकोनॉमिक पॉलिसी का सवाल और दूसरे तमाम मसाइल होंगे जिनके ऊपर मुल्क के लोग वोट देंगे। और एक और सवाल खड़ा हो जाएगा पूरे मुल्क के अंदर कि आज अगर सब जोड़ लिया जाए, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी वकालत कर रहे थे, जो तमाम अखबार और मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया के लोग
जी,
वो लोग भी इस बात को कहे हैं कि 2014 के पार्लियामानी इलेक्शन में एनडीए 182 सीटों से ज्यादा नहीं पा सकता, कांग्रेस की कयादत वाली यूपीए 140-141 सीट से ज्यादा नहीं पा सकती, और गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की जो तंजीमें हैं वो लगभग 240 के आसपास सीटें पाएंगी। ये भी एक सच हमारे हिंदुस्तानी आज की सियासी हालात का हमारे सामने है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनजान साहब जी। अफजल मिसबाही साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
जी मिसबाही साहब, जो नताएज सामने आए हैं उन पर गुफ्तगु हो रही है, अब आप ये बताएं कि क्या ये जो मौजूदा नताएज हैं इन्हें 2014 के पार्लियामानी इलेक्शन का आईना करार दिया जा सकता है?
बिल्कुल नहीं, जैसा कि अनजान साहब ने कहा कि इसे पार्लियामानी नताएज का या पार्लियामानी इलेक्शन का बिल्कुल ही बेसकीमत नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो रियासती इंतखाबात होते हैं, असेंबली इंतखाबात होते हैं, उसमें लोकल इश्यूज होते हैं, और जो लोकसभा के इंतखाबात होते हैं उसमें जो है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो है मामला, पूरा का पूरा जो है मंजरनामा वो तब्दील हो जाता है। इसलिए अभी आप देखेंगे इस वक्त पूरे मुल्क में जो जो चीज है वो ये है कि महंगाई और बदनवानी। आप देखेंगे दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने बदनवानी और महंगाई के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू की, और 11 महीने पहले जिस पार्टी की पैदाइश हुई थी उस पार्टी ने इतनी मजबूती के साथ 70 में से 27 सीटें जीत ली हैं। तो आप तसव्वुर करें कि ये इशू पूरे हिंदुस्तान का है, और दूसरी रियासतों में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा था, ये कहा जा सकता है कि लोकसभा के इंतखाबात में अगर आम आदमी पार्टी ने इसी मजबूती के साथ लोकसभा अपने उम्मीदवार जो है उतारती है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी की कामयाबी के इम्कान या ये कि एक तीसरा महाज यानी गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं वो सामने आकर इकतदार में आ सकती हैं। और ये बीजेपी की बिल्कुल ही खाम ख्याली होगी कि ये मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ को देख करके या ये कि किसी हद तक जैसी सीट जो इसने दिल्ली में हासिल की है उसको देख करके वो ये नतीजा निकाले कि वो लोकसभा में भी कामयाब हो सकती है, ये यकीनी तौर पर खाम ख्याली होगी। इसलिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसे बीजेपी को दिल्ली में भी अक्सरियत मिल सकती थी, लेकिन वहां उसको अक्सरियत नहीं मिल सकी। तो मैं मेरा मानना यह है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, और असेंबली के जो इंतखाबात होते हैं उसमें लोकल इश्यूज होते हैं, और ये एक खुशायन पहलू बीजेपी के लिए यह है कि उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह कामयाबी हासिल की है, और इसके लिए वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं या ये कि उसमें जो है बदनामी और महंगाई के खिलाफ जो आवाम में गुस्सा है और जो लहर पाई जा रही है उसका फायदा उसको मिला। अगर इन रियासतों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होते तो मैं समझता हूँ कि इन रियासतों के नतायज भी बिल्कुल दिल्ली की तरह होते, इसलिए कि यहाँ पे आवाम के पास जो है कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। दिल्ली में जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और बदनवानी और महंगाई के खिलाफ लड़कर कांग्रेस को शिकस्त दी है और बीजेपी को भी शिकस्त दी है इस तरह से मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 33% सीमित कर रह गई है, जबकि दिल्ली की सरजमीन पर बीजेपी की बरसों हुकूमत रही है। बीजेपी को तो 50 से ज्यादा बल्कि 55-60 सीटें हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन वो बीजेपी पूरी तरह वहां पे बिखर गई है दिल्ली में। हाँ, कांग्रेस के लिए ये एक तो बहुत ही खराब और सबक आमोज बात है कि कांग्रेस को चाहिए कि आवाम के लिए और ये जो बदनवानी और महंगाई और आवाम के खिलाफ जो उसकी पॉलिसी रही है, यानी कि आवाम जिन पॉलिसियों की वजह से बहुत परेशान रही है, और कांग्रेस को इस पर नजरसानी करना होगा और उसे अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने पर मजबूर होना होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, लाइन पर रहिएगा। हसन कमाल साहब, जनाब आम आदमी पार्टी के बारे में गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम एक बात जानना चाहेंगे कि अगर ये जो मौजूदा इंतखाबात हैं इन इंतखाबात को हम कांग्रेस पार्टी की शिकस्त और कांग्रेस के लिए इंतबाह देख कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक इंतबाह है और कांग्रेस पार्टी की शिकस्त है, और उसके पेश नज़र हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आइंदा पार्लियामानी इलेक्शन में कांग्रेस की पोजिशन क्या होगी, तो फिर बीजेपी के लिए हम ये अंदाज़ा क्यों ना लगाएं कि आइंदा पार्लियामानी इलेक्शन में उसकी पोजीशन क्या होगी मौजूदा इंतखाबात के नतायज को मद्देनजर रखते हुए।
देखिए दो तीन बातें
जी।
पहली बात तो ये है कि ये न भूलिए कि अन्ना हजारे की जो तहरीक थी
जी
उसका जितना जोर दिल्ली में नजर आया था
जी
दिल्ली के बाहर नजर नहीं आया था
जी।
आम आदमी पार्टी बुनियादी तौर पर शहरी पार्टी, फिर भी चूंकि उसने दोनों पार्टियों के खिलाफ एक मौकफ इख्तियार किया और दिल्ली के लोगों को एक तीसरा ऑप्शन नजर आया, इसलिए उसने उसको उसको उससे फायदा उठाया। अब राय ये कि जाहिर है कि कांग्रेस के लिए तो ये शिकस्त चाहिए, सामने की बात है, उसमें दो राय नहीं हो सकती। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो ये है कि इस हकीकत के बावजूद कि अपोजिशन बहुत बुलंद आहंग बहुत बदकलाम और बहुत बदजबान है
जी,
कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलायमियत और शराफत से काम लेती रही है, अब शायद उसे ये अंदाजा हुआ हो कि उससे काम नहीं चाहिए
जी।
कांग्रेस ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं लेकिन वो बदकिस्मती से अपने अच्छे कामों की तशहीर उस तरीके से नहीं कर सकी जिस तरीके से की जानी चाहिए थी। अब रहा ये कि जो 2014 का मंजरनामा है उसमें ये बात ना भूलिए कि जहां कहीं भी इन दोनों पार्टियों के अलावा यानी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद है वहां पर बीजेपी कभी इतना फायदा नहीं उठा पाएगी, ये हम और पहले भी देख चुके हैं। और चूंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारे सूबों में रीजनल पार्टीज मौजूद हैं, उन आम आदमी अभी 5-6 महीने के अंदर हर सूबे तक नहीं पहुंच सकती, जीत के सब साथी होते हैं, लेकिन उस जीत के बावजूद उसे एक पार्टी की सूरत में और एक मुनज्जम पार्टी की सूरत में उभरने में खासा वक्त लगेगा। तो इसलिए रीजनल पार्टीज के लिए ज्यादा मौके हैं कि वो इन दोनों पार्टी के खिलाफ अपने आप को एक तीसरा ऑप्शन बना के पेश कर सकते हैं, और जहां कहीं भी उन्होंने ऐसा किया वहां इन दोनों पार्टियों को वो कामयाबियां नहीं मिल पाएंगी जो वहां मिलती है जहां सिर्फ ये दो पार्टियां हों। तो मैं समझता हूं कि 2014 का मंजरनामा ये है कि कांग्रेस और बीजेपी जिन इलाकों में अकेले हैं वहां पर उनमें जरूर रस्सा कशी होगी और मामला बहुत दूर का नहीं रहेगा, जैसे हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा है। लेकिन जहां भी तीसरी कोई पार्टी मौजूद है वहां पर लोगों के पास ऑप्शन मौजूद होता और शायद वो उस तरफ झुक जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। जी अंजान साहब, आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी राय क्या है? ये पार्टी दिल्ली से बाहर निकलेगी या दिल्ली में ही अपनी जोर आजमाई का मुजाहरा करेगी? भाई मेरा सवाल देखिए यूं समझें कि अभी 5 रियासतों में असेंबली के इंतखाबात हुए तो 5 में से उसने सिर्फ दिल्ली को चुना अपनी सरगर्मी के लिए, और 4 रियासतों में उसने अभी कदम नहीं रखा है। तो अब इसके बाद वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी या दिल्ली में ही रहेगी?
मेरे ख्याल से दिल्ली के रिजल्ट और नतायज को देख करके उनके हौसले जरा आगे बढ़े हुए हैं
जी,
और एक पार्टी होने के नाते अभी वो एक मुकम्मल पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी नहीं, एक रजिस्टर्ड पार्टी है
जी।
और इस वोट के बाद, इस वोट के परसेंटेज के बाद मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के यकीनन कुछ सूबों में वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, और लड़ने की उनकी ख्वाहिश भी है। उनके नेताओं से जिस तरह से मेरी बातचीत हुई है, उनके कारकुनों से जिस तरह की बात हुई है, और आज भी जिस तरीके से उनके कुछ कारकुन कह रहे थे इस जीत के बाद, जो तो वो पार्लियामेंट के इलेक्शन भी लड़ेंगे। वो कि पिछली बार भी उन्होंने कुछ जगहों पर अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट किया था
जी,
लेकिन पोशीदा तरीके से किया था, खुलेआम नहीं किया था। वही तमाम जो लोग थे जो आज आप पार्टी में दिखाई, आम आदमी पार्टी में दिखाई देते थे, उन लोगों ने पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में कुछ लोगों को सपोर्ट किया था। वही लोग जो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, उन लोगों में से कुछ लोग 2009 का इलेक्शन लड़े भी थे, जिसे वो मैडम सानियाल है मुंबई से, लेकिन जो बड़े आगे आगे इस मूवमेंट में थी, लेकिन उन्हें कोई बहुत अच्छी वोट की बात छोड़िए, वो कुछ 2-4 हजार में ही निपट गए थे। लिहाजा आज के इस बदले हुए माहौल में मैं समझता हूं कि वो यकीन, मुझे लगता है कि वो जरूर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाई साहब। जनाब आइंदा जो इलेक्शन होगा, जैसा कि अनजान साहब ने कहा और आम ख्याल भी यही है कि हिंदुस्तान की पब्लिक की निगाहें तीसरे मोर्चे पर हैं, वो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई महाज की तलाश में है। अगर ऐसा कोई महाज, अगर इसका कोई इम्कान हो, तो उसमें आम पार्टी का रोल क्या होगा?
देखिए ये अगर दिल्ली की तरह, दिल्ली की जिस मजबूती के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और 70 में से 27 सीटें हासिल की हैं, हालांकि 4-5 महीने का वक्त है और ये बहुत ही कम वक्त होता है इतने बड़े मुल्क को कवर करना, लेकिन ये कि अगर आम आदमी पार्टी इसी मजबूती के साथ या ये कि 60% भी अगर इस तरह की मजबूती के साथ वो आगे बढ़ती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी तीसरे महाज की। इसलिए कि पहले ही से समाजवादी पार्टी और लेफ्ट और जनता दल यू और दीगर पार्टियां, इलाकाई पार्टियां जो रियासती सतह पर सरगर्म है और कामयाबी हासिल करती रही है, यकीनी तौर पर अगर वो सीटें निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोल होगा। और आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही ये नारा दिया है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी, और अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी अरविंद केजरीवाल की और फिर साजिद अली ने भी कहा कि वो यानी कि कांग्रेस की तरफ से पेशकश की जा रही है कि हम जो है आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारान वो सपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप देखें कि एक बहुत बड़ा मंजरनामा और एक बहुत बड़ा गिफ्ट इनके सामने मौजूद है, इसके बावजूद वो उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे लगता है कि इसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और आम आदमी पार्टी के लिए राह हमवार हो सकती है। और एक बहुत बड़ा अगर इसी मजबूती के साथ, जिस तरह जिस मजबूती के साथ उसने दिल्ली में कामयाबी हासिल की है, तो दूसरी रियासतों में भी अगर कामयाबी हासिल करने में वो कामयाब हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आम आदमी पार्टी।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन कमाल साहब। जनाब आप क्या कहते हैं कि आइंदा पार्लियामानी इलेक्शन में एक बात तो यह है कि तीसरा महाज बनने का कितना इम्कान है, और अगर वो महाज बनता है तो क्या आम आदमी पार्टी इस पोजीशन में है कि उसको लीड कर सके या उसमें कोई बुनियादी किरदार अदा कर सके? दो मिनट का वक्त है हमारे पास।
अभी तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी वन मैन पार्टी है
जी,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी को कोई नहीं जानता, और दूसरे मुझे इसका भी यकीन नहीं है कि वो किसी तीसरी पार्टी महाज में शामिल हो गए, क्योंकि इस तरीके से वो अपनी जो एक शराख उन्होंने बनाई है वो खत्म कर देंगे। और जहां तक तीसरे महाज का सवाल है, अभी पूरी तरीके से ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो महाज क्या होगा, कैसा होगा, किसकी लीडरशिप होगी, ये सब सवाल जो है अभी मोहताज जवाब है, और मैं समझता हूँ कि अभी दो तीन महीने हमें और इंतजार करना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अनजान साहब। क्या कहेंगे आप, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, आपकी पार्टी भी तीसरे महाज के सिलसिले में आगे आगे रही है, इस बार तीसरा महाज बनेगा या नहीं?
हमारी पूरी कोशिश है कि हम तीसरा महाज ये बनाएं, दो सवालों पर
जी,
कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ ले जाएं, और दूसरी हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका वारियत में यकीन रखने वाली ताकतें हैं, जो बड़े तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ रही हैं और जिनका एक पूरा हमला हिंदुस्तान की अकलियतों के खिलाफ है, उसको उसके मद्देनजर ये जरूरी हो गया है कि इस देश के अंदर जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इसके आवाम से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क की सांझी शहादत से पैदा सांझी विरासत में यकीन करते हैं, जो इस मुल्क के आईन में यकीन रखते हैं, जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, उन तमाम ताकतों को हम इकट्ठा करें। और इसलिए 30 अक्टूबर को हमने दिल्ली में एक बड़ा कन्वेंशन किया था जिसमें 60 करोड़ लोगों के नुमाइंदे इकट्ठा थे, चार चार सूबों के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, तमाम सियासी पार्टियों के लोग मौजूद थे, और हमें उम्मीद है कि हम एक महाज को खड़ा करेंगे जो गैर भाजपा होगा, जो गैर कांग्रेस होगा, जो तरक्की के रास्ते पर चलेगा, जो इस देश के अंदर उन पसमादा तबकों की हिफाजत की बात करेगा, जो इस मुल्क के दहका के सवालों को लेगा, जो इस देश के अंदर गांव गरीब और गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा और इस देश के को खुद मुख्तार बनाने के रास्ते पर ले जाएगा, जो हम किसी भी साम्राज्य की ताकतों के सामने और उसकी सियासत के सामने घटना नहीं टेकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अनजान साहब, और इसी के साथ हम अफजल मिसबाही और हसन कमाल साहब के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तजिया निगारों के ख्यालात आपने मुलाहजा फरमाए। बहरहाल तीनों तजिया निगारों के मुताबिक अगरचे जो मौजूदा इंतखाबी नतायज सामने आए हैं, ये कांग्रेस की वाजे और नुमाया शिकस्त के मुतरादिफ़ हैं, उसके लिए एक सख्त इंतबाह हैं, लेकिन इसको बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर या कम से कम नरेंद्र मोदी के लिए कोई बहुत अच्छा इसको निशानी या अलामत करार नहीं दिया जा सकता। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thesahartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।